थोड़ा थोड़ा दूर होकर बैठेंगे। दीदी वैसे भाई लोग और हैं, दीदी वो अभी आए। टोटल 204 है दीदी, भर जाता है पूरा हाल। कुछ सेवा में गए हैं और कुछ भोग के इसमें गए होंगे। यहाँ से उठा के लेके गए। जी जी जी। ओम शांति। तो आज हमारे बीच में ज्ञान सरोवर से उड़ता हुआ एक फरिश्ता पहुंचा है, आदरणीय राजयोगिनी डॉक्टर निर्मला दीदी जी। एक हाथ हिलाकर हम आपका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। शिव बाबा इस धरा पर परिवर्तन का कार्य करने के लिए 1936 में आए और अपने राइट हैंड को 1935 में ही मुंबई के धरनी में लौकिक जन्म दिया, अर्थात दीदी का जन्म 1935 में। जितने वर्ष यज्ञ को हुए हैं उससे एक वर्ष ज़्यादा दीदी की लौकिक उम्र है, लेकिन बावजूद इसके हम देख रहे हैं कितने एक्टिव होकर समय पर आते हैं और हर काम पंक्चुअली पूरा भी करते हैं। तो ये बहुत सीखने जैसी बात है। और दीदी को ये ज्ञान जब आप मुंबई में अपनी मेडिकल स्टडीज कर रहे थे, वो लगभग पूरी हुई थी, तभी आपको ये ज्ञान मिला। फिर तो आप वो ज्ञान में चलने लगे और 1965 में बाबा से ही मार्गदर्शन लेकर, चूंकि आप मेडिकल डॉक्टर रहे, मेडिकल स्टडी की, तो क्लिनिक खोला और अगले ही वर्ष बाबा के ही राय से सेवा केंद्र भी खोला। बाबा के ही मार्गदर्शन से अपने पिता से सेवा केंद्र दहेज के रूप में प्राप्त किया। तो शुरू से ही तन मन धन सब कुछ सफल करने के दीदी के संस्कार रहे हैं और वही शिक्षा दीदी सबको देकर सबका भाग्य बनाते रहते हैं। फिर तो बाबा ने आपको 71 में विदेश सेवाओं के लिए चुना और फिर 77 से लेके 78 तक आप विदेश में अलग अलग स्थानों पर सेवाएं देते रहे। आरंभ में तो लंदन में ही जाना हुआ, करीब एक वर्ष वहां रहे, फिर पूरे आसपास के स्थानों में भी ट्रैवल किया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस आदि आदि स्थानों पर आपने रमता योगी बनकर सेवाएं दी, बाबा के सेवा केंद्र खोलने के निमित्त बने। और फिर 1978 में आपने ये डिसाइड किया ऑस्ट्रेलिया को अपना बेस बनाने के लिए। तो 1978 से 2008 तक करीब 30 वर्षों तक ऑस्ट्रेलिया की धरनी सिडनी में रहकर, जहाँ पर वर्तमान में 3 रिट्रीट सेंटर्स हैं, वहाँ की सेवाएं की। और फिर तो बाबा ने आपको ज्ञान सरोवर अकेडमी के लिए भी चुना, आप वहाँ के डायरेक्टर हैं। 2009 में आप ज्ञान सरोवर संभालना शुरू किया। तो क्यों कह सकते हैं दीदी के कंधों पर देश और विदेश दोनों ही धरनी की जिम्मेवारी है, ज्ञान सरोवर के डायरेक्टर और ऑस्ट्रल एशिया पैसिफिक रीजन के भी आप रीजनल कोऑर्डिनेटर हैं। और जैसे जैसे यज्ञ आगे बढ़ता जा रहा है, दादियां अव्यक्त होती जा रही हैं, आपके कंधों पर जिम्मेवारियां बढ़ती जा रही हैं। वर्तमान में तो आप यज्ञ के जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड भी हैं, आप आईटी विंग के भी चेयरपर्सन हैं। इसके अलावा गुप्त रूप से बहुत छोटी छोटी जिम्मेदारियां, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेवारियां आपके पास हैं जिनको संभालते हुए आप बहुत हल्के, बहुत निश्चिंत और बहुत पंक्चुअल रहते हैं और बहुत ही मितभाषी हैं, बहुत ही कम शब्दों में बड़ी बड़ी बातें का इशारा हमें दे देते हैं। दीदी की विशेषता खास निर्मलता और पवित्रता, जैसे आपका नाम है, आपकी उपस्थिति मात्र से पूरे वातावरण में हम वो निर्मल पवित्र वाइब्रेशन अनुभव करते हैं। इतना ही नहीं, बाबा ने आपकी इस विशेषता के कारण एक सुंदर टाइटल दिया, जानते हैं आप सभी, निर्मल आश्रम। बाबा दीदी को कहते थे निर्मल आश्रम। तो ऐसी निर्मलता की प्रतिमूर्त आज हमारे बीच में है। आज हम दीदी से सुनेंगे जो आज का वरदान था, डबल अहिंसक भव, उसी को विस्तार से आज हम दीदी से समझेंगे। तो दीदी को इसलिए हमने विशेष टॉपिक दिया, सच्ची अहिंसा क्या है। तो हम सुनते हैं आदरणीय दीदी जी से।
ओम शांति। ये सोफा पर तीन बहन बैठी है, एक सोफा पर एक बैठी है, तीन में से एक बैठ यहाँ बैठो। और जिनको टेका चाहिए ना बहन, ये खाली पड़ा है, वहां से उठो। और मास्क कहाँ है आप लोगों का? हाँ बहन उठो, टेका चाहिए वो वहां बैठो ना, खाली सोफा पड़ा है। यहाँ बैठो बहन, खाली पड़ा है, वो नहीं देखती है ना, उधर जगह कराती है। ओम शांति। कहते हैं अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा परम धर्म है और हम हैं डबल अहिंसक। दुनिया में आज हम देख रहे हैं हिंसा बढ़ती जाती है। गुस्सा आया मारी चपाट, माँ बाप बच्चों को और पति पत्नी को। कोई कोई पत्नी पति को मारती है, पर ज्यादा तो ज्यादातर पति पत्नी को। सिर्फ यहां नहीं, विदेश में भी हम कहते हैं वाइफ बैशिंग, वाइफ को पीटो, वो कॉमन है। और आजकल तो क्या है, ये पैंडेमिक के कारण क्या होता है, घर में बैठे हैं ना, तो कहते हैं ना नवरो नखो द्वारे। जिसको काम नहीं है ना, वो मारपीट करने का काम करते हैं। और सब अपने हाथ में लॉ ले लेते हैं। आज किसी का एक्सीडेंट हुआ रास्ते में, कोई मर गया, इवन जानवर मर गया, तो भी जिसने एक्सीडेंट किया उसका बेहाल हो जाता है। आसपास के लोग लाठी लाकर आके पिटाई कर देते हैं। तो देखा गया है कि स्मृति, दृष्टि, वृत्ति, कर्तव्य सब गड़बड़ हो गए हैं। तो बाबा क्या कराते हैं, पहले तो हमारी स्मृति बदलते। तुम दे नहीं हो, दे ही हो। फिर वृत्ति बदलती है और कर्तव्य भी बदलते हैं। तो लक्ष्य हमारा है पतित से पावन, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, देवता बनना है। और सतो प्रधान माना सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी। तो हमारे पास 36 गुणों की लिस्ट है या 38 गुणों की लिस्ट है, तो देखना है कि हमारे में वो सर्वगुण है। और वो भी 100% चाहिए ना, यदि हमें विश्व का मालिक बनना है तो 100% चाहिए। गुण 100% चाहिए, सब चाहिए, सर्वगुण और संपूर्ण निर्विकार। क्योंकि एक भी विकार होगा तो हम मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख देंगे जरूर। और हमारा लक्ष्य है मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी हम दुख न दे। डबल अहिंसक है ना, मनसा भी ना, हाथ उठाने की तो बात छोड़ो, पर मनसा भी किसी को दुख न दे, वाचा भी ऐसा हम कोई शब्द न बोलें, कड़वा शब्द बोलना या गाली देना या किसी की इच्छा को ऐसे ठुकरा देना, किसी को ठुकरा देना, ये नहीं करना है। वाचा भी, या वाचा भी किसी का अपमान नहीं करना है। गाली गलौज तो छोड़ो, उनका अपमान नहीं करना है। बाबा कहते हैं कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो, सोच समझ कर बोलो। जो सोच समझ कर बोलेंगे तो क्या होगा, पछताना नहीं पड़ेगा। आज भी बाबा ने कहा ना, सत्य में असत्य मिक्स नहीं करो, नहीं तो पछताना पड़ेगा। तो इसलिए हमें देखना है कि हम पहले सोचे, पीछे बोले, पीछे करें। तो हमारा अस अनादि और आदि संस्कार सतो प्रधान है। जब हम परम धाम में थे सतो प्रधान थे, जब हम सतयुग में आए आदि में सतो प्रधान थे। फिर धीरे 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 जैसे उतरती कला होती गई, सतो प्रधान से सतो बने, सतो से रजो, रजो से तमो बने। अब हम फिर से सतो प्रधान बनना। सतो प्रधान बनने के लिए क्या करना चाहिए, बाबा की याद। याद के द्वारा हमें शक्ति मिलेंगे, उस शक्ति द्वारा हम अपने विकारों के ऊपर विजय पा सकेंगे। और याद के लिए हमें क्या चाहिए, वैराग्य। इस पुरानी दुनिया से वैराग्य, किसी में इंटरेस्ट ना हो, वैराग्य है तो त्याग सहज है और त्याग है तो तपस्या है। आप लोग यहां तपस्या करने आए हो, मौन रखते हो? कौन कौन है जो मौन रखते हैं? थोड़े। अच्छा, ध्यान सरोवर में हम पहले दिन बोलते हैं तीन प्रकार का मौन, मन का, वाचा का और मोबाइल का। तीन प्रकार का मौन रखना है तब तपस्या ठीक होंगी। तो इसलिए एक तो मौन रखना है और जितना हमको ये बुद्धि में क्लियर है, कल बाबा हमको क्या देने वाला है, कल हमारे दरवाजे पर विमान होंगे, ठीक है? फील करते हो या समझते हो कि हम तो राजा नहीं बनेंगे, हमारे पास विमान नहीं होगा, हेलीकॉप्टर नहीं होगा? तो विमान होंगे तो उसके आगे आजकल की मर्सिडीज, BMW क्या है, कितनी भी बड़ी गाड़ियां हैं आजकल की, कुछ नहीं। वो विमान भी बच्चे भी चला सकेंगे, इतने सहज होगा। और लक्ष्मी नारायण का ड्रेस देखा है ना, कितना खूबसूरत ड्रेस है, और रोज बदलते रहते हैं, रोज नया ड्रेस। और अलंकार देखो कितने हैं। तो आजकल की साड़ियां या ड्रेस क्या है उसके भेद में? तो जब ये बुद्धि में है, कल जाकर हम वहां ऐसा सब कुछ 36 प्रकार का भोजन होगा, उसकी भेंट में पानी पूरी भेलपूरी क्या है? कुछ नहीं। तो जब ये क्लियर पिक्चर है तो पुरानी दुनिया से वैराग्य आना सहज हो जाता है। इसलिए पुरानी दुनिया से पूरा वैराग्य हो तो त्याग सहज। और क्या प्राप्ति हो रही है? एक आधा जन्म हम पवित्र रहेंगे, 21 जन्म की बादशाही मिलती है, तो क्या बड़ी बात है। त्याग करना जब भाग्य देखते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो संपूर्ण पवित्रता धारण करनी है, विकार का अंश मात्र भी ना रहे, ये देखना है। क्योंकि अंश होगा वंश बढ़ेगा। तो सबसे पहला विकार है देहभान, और देहभान का लक्षण क्या है? अपने देह तरफ नजर करते रहेंगे। मैं कैसे देखती हूँ? आईने में 15-20 बारी देखेंगे, बाल तो ठीक है, साड़ी तो ठीक है, इधर उधर बैठने के लिए भी सोचेंगे कि कपड़े में क्रीज न हो जाए। और सबके कपड़े देखेंगे, इसने क्या पहना है, उसने क्या पहना है, इसके बाल कैसे बने हैं, उसके बाल कैसे बने हैं। यहाँ तो सबके काले बाल है, वहां तो विदेश में तो रंग बेरंगी बाल बनाते हैं। तो बाल देखेंगे, यहाँ फिर क्या देखेंगे, हैंडबैग कैसी है, चप्पल कैसे है, तिलक कैसा है। तो बाह्यमुखी होते हैं ना, देवान है बाह्यमुखी, बाहर का शो देखेंगे। किसी के घर में भी जाएंगे, क्या फर्नीचर है, क्या डेकोरेशन है, पेंटिंग कैसे है, टाइल्स कैसी है, आदि आदि। और देवान वाले औरों को अपनी हाल चाल चलन बोल नखरे से इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे। एक्टर एक्ट्रेस को या अपना जो हीरो हीरोइन है उसको फॉलो करेंगे। जो क्रिकेट के शौकीन है वो क्रिकेटर जैसे बाल बनाएंगे, जो एक्टर्स के शौकीन है वो उसके जैसे बाल बोल चाल करेंगे। और हंसी मजाक उड़ाना ये भी देवान की निशानी है। और गपशप, पराई पच्चर बाबा कहते हैं ना, उसके बारे में बातचीत करना, कौन क्या है, कैसा है, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। और अपने पर जैसे तरस आता है उनको, मुझे कोई नहीं पूछता, फलाने का देखो सब चांस उसको देते हैं, मुझे कोई नहीं देता। मेरी माँ है, मेरे भाई से प्यार करती है, उसको सब कुछ देती है, मेरे से तो सिर्फ काम करवाती है। तो अपने ऊपर दया आती है उसको, और नर्वस हो जाते हैं। देवान वाले हैं, वीआईपी के सामने जाना होता है या भाषण करना होता है तो नर्वस हो जाते हैं। और समय शक्ति धन बर्बाद करते हैं। जैसे नई फैशन का कपड़ा देखा, ये लहंगा बहुत अच्छा है, चलो हम खरीद लेंगे। तो नई फैशन देखते रहेंगे शोकेस में, क्या नया फैशन है, रास्ते में भी देखते रहेंगे क्या नया कलर है, क्या फैशन है, आदि आदि। और चिंता भी होती है, शर्म भी आती है। और आजकल तो पतली कमर चाहिए ना, तो वजन करते रहेंगे, डाइटिंग करते रहेंगे, अपने माप करते रहेंगे कि ठीक है या नहीं, चौड़ाई लंबाई ठीक है या नहीं। तो देह है देवान की निशान, तो ये देखना है, क्योंकि देवान सब विकारों की जड़ है। इसलिए बाबा रोज 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 याद दिलाते हैं बच्चे देही अभिमानी बनो। दूसरा विकार मैं कहूंगी, पहले ईगो लेवे अहम, मैं, तो वो क्या करेगा, अपनी बड़ाई करता रहेगा, मैं ऊंच कुल का हूं, मैं हेल्दी हूं, मैं ब्यूटीफुल हूं, मैं डायरेक्टर हूं, मैं ये हूं वो हूं, और जिसमें अभिमान है वो दूसरों का अपमान जल्दी करेगा, तो बुद्ध हो जानते नहीं कितनी बार कहा फिर भी भूल करते रहते हो। और अपने को जरा भी नीचा दिखाएगा नहीं, अंदर कितना भी दुखी होगा बाहर से हंसता रहेगा, अंदर नर्वस होगा बाहर से हंसता रहेगा, और नाजुक स्वभाव जल्दी दुख हो जाता है, रिस्पेक्ट चाहता है, रिस्पेक्ट नहीं मिलता तो दुखी होता है, और मैं जो कहता हूं वो ठीक है उसी अनुसार चलना है सबको। बॉसी, और हर एक बात में खुद को आगे रखता है, मैं जैसा भाषण करता हूं कोई नहीं कर सकता, मैं ही करूंगा, तो दूसरों को चांस नहीं देता। तो बाबा कहते हैं नम्रता रखो, बाबा खुद कहता है मैं आपका ओबीडियंट सर्वेंट हूं, टीचर्स को भी कहते हैं टीचर्स, अपने को टीचर्स नहीं समझो सेवादारी समझो। तो जितना नम्र बनेंगे, जितने गुणवान होंगे उतने नम्र बनेंगे, जैसे झाड़ में जितने फल ज्यादा है ब्रांचेस झुकती है, इसी रीत से जितना गुणवान होगा झुकेगा। और फिर सबसे बड़ा विकार है काम विकार, बाबा की मदद से ज्ञान की मदद से हम ब्रह्मचर्य का पालन तो सहज कर सकते हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते पति पत्नी साथ में रहते भी ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, परंतु काम का सूक्ष्म रूप है अट्रैक्शन आकर्षण, किसी की पर्सनालिटी से आकर्षित हो जाते हैं या प्रभावित हो जाते हैं, व्यक्ति वैभव वस्तु आकर्षित कर सकते हैं। दूसरा है प्रभावित होना, अच्छा मकान देखा वाह ये तो बहुत अच्छा है, अच्छी कार देखी वाह ये तो बहुत अच्छी है, तो वहां बोलते क्या होता है आंखें बड़ी हो जाती है। तो इसलिए प्रभावित भी नहीं, एप्रिशिएट करना, कोई भी चीज अच्छी है एप्रिशिएट जरूर करो, प्रभावित नहीं होना। इच्छा ना हो, ये विकामना कि अच्छा है, चलो मेरे पास होना चाहिए, मेरे भाई का मकान बहुत अच्छा है, मेरा भी तो उससे अच्छा होना चाहिए, हमारे बिजनेस पार्टनर का मकान ऐसा है, हमारा भी ऐसा होना चाहिए, तो ये डिजायर हो जाती है कामना। फिर फैमिलियरिटी कि एक ही व्यक्ति से सारा दिन लेन देन, सुख दुख की बात सब उसके का साथ सारा दिन करते रहे, ये हुआ फिर ये हुआ ये हुआ ये हुआ। अब बाबा हमारा फ्रेंड है, दूसरों को फ्रेंड बनाने की दरकार है क्या? तो सुख दुख की बात बाबा को करो, बाबा से दिल हल्का करो, पर व्यक्तियों से होना फैमिलियरिटी नहीं, नाम रूप का प्यार। यूजुअली पति पत्नी एक दो की महिमा करते रहेंगे, मेरी वाइफ ऐसी है, ये करता है, ये करती है, वो पति पत्नी, मेरा पति तो ऐसा है, ये करता है, वो करता है, ऐसा जानता है, वैसा जानता है, या माँ बाप बच्चों की महिमा करते रहेंगे सारा दिन, मेरा बच्चा तो ऐसा, मेरा बच्चा तो ऐसा, मेरा बच्चा तो ऐसा। तो क्या हुआ, जिसका नाम लेंगे रूप भी तो सामने आएगा, तो ये नाम रूप की बीमारी। तो इसलिए देखना है ये सूक्ष्म में भी ना हो, प्यार बल सबसे हो, रूहानी प्यार हो, चाहे पति पत्नी है, माँ बाप बच्चे हैं, चाहे अड़ोसी पड़ोसी है, सबसे प्यार, मेरापन न हो और उनके नाम रूप में फंसना नहीं है। फिर है मोह की जाल, मेरा तो मेरे पर क्या करते हैं, अधिकार जमाते हैं, मेरा है ये करना चाहिए, बच्चे के लिए भी कहेंगे यही पढ़ना है, डॉक्टर ही बनना है या इंजीनियर ही बनना है, वो बच्चा चाहता है कुछ पर माँ बाप कहेंगे नहीं ये ही करना है, और मेरा है तो ये करना है मेरे लिए। और जिसमें मोह होगा उसकी तरफदारी करेंगे, तो जब माँ के चार बच्चे हैं एक में विशेष मोह होगा तो क्या करेंगी, उसके लिए पहले अच्छा अच्छा खाना बना अलग रख देंगी, वो आएगा उसको खिलाएंगे। और टीचर बहन क्या करेंगे, जिसमें मोह होगा मुरली उसको देंगे, पहले उनको और अलग होना पड़ता है तो रोना पड़ता है, माँ बाप बच्चों को विदेश प्यार से भेजते हैं, नशा रहता है, ओ मेरा बच्चा अमेरिका पढ़ने चाहता है, और एयरपोर्ट पर देखो तो रोते हैं जैसे कि कोई मर गया। अलग होना कितना दुख होता है। एक माँ तो कहती थी मेरा बच्चा अमेरिका गया, उसको जलेबी बहुत अच्छी लगती थी, अभी अमेरिका में उसको कौन जलेबी खिलाएगा, मैं भी जलेबी नहीं खाती अभी। तो ये होता है मोह होता है ना, वो बच्चा बीमार है, बेहोश है, उसको कुछ दुख नहीं, पर माँ बाप को कितनी दुखी है और परेशानी हो जाती है। मुंह डॉक्टर परेशान नहीं होता है, नर्स परेशान नहीं होती है। बच्चा मर गया तो डॉक्टर बेचारा गया कह के अपने काम में लग जाएगा, पर माँ बाप कितना समय रोते रहेंगे। मुंह की रग भी बहुत गहरी है, जल्दी छूटती नहीं। फिर है लोभ, लोभी नर सदांतु असंतुष्ट। उसको इच्छा रहती है चाहिए चाहिए चाहिए, और वो स्वार्थी रहता है और मनहूस रहता है। जब दान देना होता है ना, लाखों होगा 500 दे दिया तो समझता मैंने बहुत दे दिया, और क्या करता है चाहिए, कुछ खाने की चीज अच्छी लगेंगे ना तो डबल खा लेंगे, नहीं अच्छी लगेंगी तो कहेंगे आज तो मुझे भूख नहीं है। और लोभी का घर में आप देखेंगे कबट भरा पड़ा होगा, नया आता जाता है पुराना भी भरते जाते हैं। तो जब ये बुद्धि में आता है कि बाबा हमें अविनाशी ज्ञान धन देते हैं, प्यार देते हैं, सुख देते हैं, शांति देते हैं, सब कुछ देते हैं, अविनाशी चीजों की क्या दरकार है। सहज मिला तो दूध बराबर, मांग लिया सो पानी। तो इसलिए सहज मिल गया चलो यूज करो, साधन है यूज करो, पर इच्छा नहीं रखो। इच्छा तृष्णा रखेंगे नहीं मिलेंगी तो दुख होगा। उसके बाद है गुस्सा क्रोध, क्रोध मैं समझती सब में होगा। विशेष जिनमें ईगो है ना, मैंने कहा तुमने किया क्यों नहीं, तो गुस्सा आ जाएगा, मैं बड़ा हूं, मैंने ये आपको हुक्म किया नहीं क्यों किया। तो जब अपेक्षा पूरी नहीं होती है तो गुस्सा आ जाता है, दूसरा धीरज नहीं रहती तो गुस्सा आ जाता है, इतने टाइम में होना चाहिए था क्यों नहीं हुआ। खुद को भल बदलने में टाइम लगेगा, पर दूसरों को कहा है तुमने क्यों नहीं बदला, उसका हल्का रूप है चिड़चिड़ापन। नाराजगी, दलीलबाजी, फोर्स से बोलना, वो बच्चा क्या करेगा, गुस्साएगा, दरवाजा ठोकेगा, जमीन ठोकेगा, ऐसा पांव से करेगा। और क्या है, कई तो क्या करेंगे, जिससे गुस्सा हुआ आंख के सामने नहीं देखेंगे, सामने से आता देखेंगे, वो वहाँ से आता है तो ये यहाँ से चला जाएगा, सामने देखेंगे तो हेलो करना पड़े, ओम शांति कहना पड़े, कैसे हो बोलना पड़े ना, तो इसलिए उस तरफ रवाना जाएंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं शांतचित बनो, उसी समय रिएक्ट नहीं करो, गुस्सा आया ना रिएक्ट नहीं करो, पहले शांत हो जाओ, बैठो योग में कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। जब शांत हो जाओ तब धीरे से जो बोलना है बताओ, परंतु शांति से। तो याद द्वारा जितनी सहनशीलता, रूहानी प्रेम रखेंगे और धैर्य धारण करेंगे तो गुस्सा आने का सवाल नहीं है। जिससे प्रेम होता है उसको सहन कर लेते हैं। जैसे देखो आपके बच्चे हैं चंचल होंगा और पड़ोसी के बच्चे के साथ झगड़ा करेगा तो आप पड़ोसी की माँ, उसकी माँ आएंगे तो क्या कहेंगे, तुम्हारे बच्चे ने भी तो कुछ किया होगा, तभी तो मेरे बच्चे ने किया ना, तो वो उसका पक्ष लेंगे। अच्छा, फिर है अलबेलापन। देखो बाबा कहते हैं तुम्हारा संकल्प, बोल, वचन, कर्म, संबंध सब संगम का बहुत वैल्यूएबल है, उसको फालतू गंवाना नहीं है। पर अलबेले होंगे वो अटेंशन नहीं देंगे, फालतू गंवाएंगे, और अलबेले होंगे ऑर्गेनाइज नहीं होंगे, और फिर बहाना क्या करेंगे, मैं तो भूल गई। मैंने समझा के फलाना कर लेगा, तो इसलिए खुद भी अपना समय, संकल्प, शब्द व्यर्थ गवाएंगे, औरों का भी तो व्यर्थ चिंतन चलेगा ना कि इसने टाइम पर काम नहीं किया। तो बाबा कहते हैं व्यर्थ नहीं गवाओ, नहीं तो समर्थ नहीं बनेंगे, तो इसलिए केयरफुल रहना है, संभलना है। जैसे अपनी वैल्यूएबल चीज हम क्या करते हैं, डबल लॉक में रखते हैं, तिजोरी में रखते हैं, बैंक में रखते हैं कि कोई हमारी चीज चोरी ना कर ले। तो ये तो बहुत हमारी अमूल्य चीज है। फिर है आलस्य। मेन आलस्य आता है अमृत वेले उठने में ना, कहते सारा दिन तो योग करना है ना, अभी रात को देरी से सोए हैं, अमृत वेले झुटका आएगा ऐसे क्यों नहीं आराम से उठे, फिर सारा दिन कर्मयोग करेंगे। और बहाने क्या बताएंगे, थक गई हूं, उसको आराम पसंद होते हैं, जो आलसी होते हैं ना आराम पसंद, उमंग उत्साह, इसलिए आलस्य आता है। जिसको उमंग उत्साह होता है ना वो आलसी नहीं होते। तो तो ये लोग होते हैं जिम्मेवारी नहीं लेते हैं। उसके ऊपर हम भरोसा नहीं रख सकते हैं। अब जो आलसी हैं, इसलिए बाबा कहते हैं उत्साह बढ़ाओ। फिर है ईर्ष्या। ईर्ष्या का कारण है स्वमान की कमी। जितना हम स्वमान में रहेंगे ईर्ष्या नहीं रहेगी। क्योंकि आजकल लोग क्या करते हैं, भेंट करते हैं, वो गोरी है मैं इतनी गोरी नहीं हूं, ईर्ष्या है। वो स्मार्ट है मैं इतनी स्मार्ट नहीं हूं, ईर्ष्या। उसको सब पूछते हैं, मुझे कोई पूछते नहीं। और कंपटीशन, जो हमारे से कंपटीशन में अच्छे हैं तो उनकी ईर्ष्या आती है। और अपने को सुरक्षित नहीं समझते हैं जो ईर्ष्या वाले हैं ना। बाबा कितने स्वमान के टाइटल देते हैं कि एक एक बच्चा मेरा विशेष है। अपनी विशेषता देखो और खुश रहो कि बाबा ने हमको चुना। आप विशेष नहीं होते तो बाबा ने चुना होता? बाबा ने आपको बच्चा बनाया, सज्जनी बनाया, फ्रेंड बनाया, कुछ तो विशेषता है। तो इसलिए स्वमान में रहने हो, नशे में रहो, जलसी ना हो। और दसवां विकार है वैर भाव, नफरत भाव। बाबा कहते हैं बदला नहीं लो, बदल करके दिखाओ। जो वैर भाव वाले होते हैं बदला लेते हैं, तुमने ये किया है मैं जरूर दिखाऊंगा। और फिर हिंसक भी हो जाते हैं, मारपीट भी करते हैं, शब्दों से भी बोलते हैं। और जैसे हमने शुरू में बताया ना, कायदा अपने हाथ में लिया, तुमने ये किया, लारो लाठी लेके दो चार मित्र को बुला लिया, खूब पिटाई कर दी। और कोई इनकी महिमा करेगा दूसरों की, कहेगा तुमको क्या मालूम, मैं जानता हूं इसमें ये है ये है ये है ये है, उनके बुराई करेंगे। बाबा कहते हैं शुभ भावना रखो, मैत्री भावना रखो, प्यार की भावना रखो। यदि रूहानी प्यार भाव है, मैत्री भाव है, शुभ भावना है, तो वैर और नफरत हो सकती है क्या? तो इसलिए हमें अभी अपने आप पर ध्यान रखना है। जन्म जन्मांतर का पापों का बोझा खत्म करने का टाइम है अभी। अभी पाप कर्म बढ़ाने का टाइम नहीं है। यदि हमारे में कोई भी हिंसक भाव होगा, विकार होगा, पाप बढ़ेगा। फिर याद नहीं रहेंगे ना, पाप का बोझा है, याद कैसे रहेंगे? याद नहीं रहेंगे। तो इसलिए अपना अपने को देखना है, अपने को चेक करना है, अपने को सुधारना है। बाबा रोज रोज कहते हैं समय थोड़ा है। मैं आया, आज भी बाबा ने कहा है, मैं आया हूं आपको पावन बनाकर घर ले जाने, मैं आया हूं पढ़ाने, तुम्हारा काम है पढ़ना और पढ़ाना, सेवा करो, प्लान बनाओ, विचार सागर मंथन करो, कैसे बाबा का मैसेज सबको देना है उस पर विचार करो। तो हमारा पुण्य का खाता जमा कराने का भी टाइम है, पवित्र बन पवित्र दुनिया में जाना है, ये लक्ष्य सदैव रखना है। और अपनी कमी कमजोरी निकाल देनी है। कई बार बाबा कहते हैं ना, हम दूसरों के जज बन जाते हैं, ऐसा ऐसा इसने ये किया, इसने करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, और अपने वकील बन जाते हैं, दलील करते हैं, मैंने क्यों किया, ये गलत नहीं है, हाँ बहाना बनाते हैं अपने को निर्दोष ठहराने के। तो ये नहीं, अभी अपना जज बनो, अपना टीचर बनो, और अपनी कमी कमजोरी को हटाना है। समय थोड़ा है, हमारा तीव्र पुरुषार्थ होना है। आत्मनिरीक्षण कर आत्म परिवर्तन करना है। ओम शांति। 5 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे।
बाबा तुम कितने अच्छे हो, कितने अच्छे वरदानों से हमें सजाते हो, और उन वरदानों को हम सहज प्रैक्टिकल कैसे ला सके उनका हमें अनुभवी रत्नों से स्पष्टीकरण देते हो, उनका सानिध्य देते हो, है ना। कितने अच्छे हैं बाबा और कितने अच्छे हमारे दीदी। दीदी का एक हाथ हिलाकर धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया करते हैं, आभार मानते हैं।